वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
चलता जा राही, चलता जा राही, चलता जा राही, चलता जा। प्रभु तेरे जो साथ है, राही चल चलता जा राही, चलता जा। राह अंधेरी है, कोई ना टिकाना, दूर सितारा चमके वही तुम ठहरना। राह अंधेरी है, कोई ना टिका, राही चलता जा राही, चलता जा राही, चलता जा राही, चलता जा। कहीं तुम भटक ना जाना, यही है वो रास्ता, ले जाएगा तुझको मिलने दुनिया के राजा से। कहीं तुम भटक ना जाना, यही है वो रास्ता, ले जाएगा तुझको मिलने राजा से यही तेरी मंजिल यही है सहारा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम में और उन सब मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से नए नियम की पुस्तक और उसके दूसरे कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज का वचन हमें से हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, दुखी और परेशान हैं। पिताजी, आप उन सब पर भी अपने अनुग्रह प्रदान कीजिए ताकि एक एक जीवन अपने हृदय में शांति को प्राप्त कर सके। इस समय आप हम सब की सहायता कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम देखेंगे मसीही सेवा में हर परिस्थिति में परमेश्वर की सांत्वना। यहाँ हम अपने सामने मसीह यीशु के सेवक की अनिवार्यता स्पष्ट देखते हैं। हमें कोई भी इसे पढ़कर या कहने से नहीं रुकेगा, वह इन बातों में सिद्ध है। हम इन ऊंचे मानकों को स्पर्श नहीं कर सकते। यहाँ हम हर परिस्थिति में मसीही सेवा में परमेश्वर की सांत्वना देखते हैं। आज हम देखेंगे सेवा के कष्टपूर्ण अनुभव। तो आप मेरे साथ निकालिए दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसका 1 पद। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसका 1 पद लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। जी हाँ, बीच की एक दीवार हमें गिराना आवश्यक है, याजक और अयाजकीय विश्वासियों के मध्य की दीवार। कुछ को परमेश्वर ने शिक्षा देने का वरदान दिया है। यदि मुझे कोई वरदान प्राप्त है तो वह यही है। यदि मैं इसका दावा न करूं तो मेरे पास कोई वरदान ही नहीं है। वरदान प्राप्त शिक्षक है तो मिशन सेवा का वरदान प्राप्त सेवक भी है, जिन्हें हम याजक कहेंगे। परमेश्वर मसीह की देह में हर एक को वरदान से संपन्न करता है। मंच पर और बेंच के मध्य अंतर नहीं होना है। हम सब एक साथ सहकर्मी हैं। यदि आप सुन रहे हैं तो स्मरण रखें, आपका भी उत्तरदायित्व वचन के उच्चार में उतना ही है जितना कि मुझ तक या एक याजक का। मुझे शिक्षा देने का वरदान है। आप शायद बैंक के अध्यक्ष हों या किसी बड़ी कंपनी के अध्यक्ष हों या कार्यकर्ता हों, वाहन चालक हों, गृहिणी हों, आप वचन प्रचार के उत्तरदायी हैं। परमेश्वर ने कलीसिया को शिक्षक, पास्टर, सेवा में सहायता हेतु वरदान प्राप्त सहयोगी जो विश्वासियों की सेवा में तैयार करते हैं आदि अनेक सेवक को रखते हैं। मैं एक बार फिर डॉक्टर अर्ल राडमेकर का उदाहरण देना चाहता हूँ। चरवाहा भेड़ को जन्म नहीं देता, भेड़ को भेड़ ही जन्म देती है। मेरे प्रियो, आप में से अनेक जनों का यह विचार है कि मनुष्य को मसीह में लाना प्रचारक और एक सेवक का काम है। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि यह आपका उत्तरदायित्व भी है? परमेश्वर ने शिक्षक, प्रचारक या सेवक और शुभ संदेश वाहक दिए हैं कि आप बाहर जाकर मसीह की गवाही दें। जी हाँ, आप मसीह की सेवा की गवाही देने के लिए तैयार किए जाएं। चरवाहा भेड़ को जन्म नहीं देता है, वह उनका पालन पोषण करता है, उनकी रक्षा करता है। वह भेड़ें चराता है परंतु उनको जन्म नहीं देता, भेड़ें ही भेड़ों को जन्म देती हैं। आज कलीसिया का कार्य प्रगति पर नहीं है, अर्थात प्रगति नहीं कर रहा है, क्योंकि भेड़ें मसीह की गवाही नहीं दे रही हैं। मैं फिर वही प्रश्न पूछता हूँ, यद्यपि कि यह बहुत व्यक्तिगत है, आज आप मनुष्यों को वचन सुनाने के निमित्त क्या कर रहे हैं? आप वह काम कर सकते हैं जो मैं नहीं कर पाता। मैं तो क्या कोई भी प्रचारक नहीं कर पाएगा। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो केवल आपकी बातों को मानते हैं। वे प्रचारक की बातों को तो वे अनसुना कर देते हैं। यदि आप उन्हें प्रेरित करेंगे तो वे अवश्य ही सुनेंगे। मैं एक व्यापारी को जानता हूं जिसे बोलने में कठिनाई होती है और वह सोचता है कि मनुष्यों से बात करने में वह सक्षम नहीं है। वह हमारे कार्यक्रम के टेप ले जाकर बांटता है। वह साथियों और सहकर्मियों के घर जाता है, उसके पास हमारे टेप जो वचन से भरे हुए हैं उनको सुनाता है, जिन्हें वह उन्हें सुनाता है। यह मसीह की गवाही का एक उदाहरण है। जी हाँ, हम सहकर्मी हैं। मेरा और आपका काम एक है। आगे पौलुस कहता है, उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ में जाने न दो। कोई परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ कैसे जाने देगा? परमेश्वर अपनी भलाई और दया हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर की असीम भलाई पाना और परमेश्वर के अनुग्रह के उद्धार का आनंद लेना, परंतु फिर भी सांसारिकता में मग्न रहना ही तो अनुग्रह को व्यर्थ करना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आज हम परमेश्वर के अगाध प्रेम के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं? आप इस पर अवश्य विचार करें। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 6:2 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। ध्यान दीजिए, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। कुछ का कहना है, मैं अभी तो मसीह को ग्रहण नहीं करूंगा, बाद में कभी देखूंगा। वे मसीह को ग्रहण करना स्थगित कर देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी प्रसिद्ध प्रचारक या एक बड़ी सभा की प्रतीक्षा करते हैं। अब आप जो भी हों, जहां भी हों, यदि आपने उद्धार का अनुभव नहीं पाया है तो आज उद्धार का दिन है। अपनी घड़ी को देखें, जो भी समय हुआ है वही आपके लिए उद्धार का समय है। अब कोई कहे कि वह कल मसीह को ग्रहण क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं? परंतु कल की क्या गारंटी है कि आप उसे देख पाएंगे या आप जीवित रहेंगे? महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर कहता है कि समय आज इसी समय है। जी हाँ, आपके उद्धार का समय भी अभी है। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 6:3 में लिखा है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। हमें अपने व्यक्तिगत आचरण के बारे में अत्यधिक सावधान रहना है। हमें किसी भी बात में ठोकर का कारण नहीं बनना है। अब ठोकर के कारण का अर्थ यह न समझें कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्योंकि आज कलीसियाई सेवा में ऐसा भी होता है और हो ही नहीं सकता कि किसी की भावनाएं आहत न हो, क्योंकि कुछ लोग तो कलीसिया के कार्यकलापों में इसलिए सहभागी होते हैं कि उनकी भावनाएं आहत हों। बहुत से पवित्र जनों की मानसिकता ऐसी भी होती है, जैसे डॉक्टर आयरनसाइट ने इस विषय बहुत ही अच्छी बात कही थी, यदि आप उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे तो वे सोचते हैं कि आप उन्हें तुच्छ समझ रहे हैं, और यदि आप उनसे हाथ मिलाएंगे तो उन्हें गठिया का दर्द होता है। यदि आप उनसे वार्तालाप हेतु रुक जाएं तो वे सोचते हैं कि आप उनके जीवन में विघ्न डाल रहे हैं, और यदि आप उनसे बात न करें तो वे सोचते हैं कि आप घमंडी हैं। यदि आप उन्हें पत्र लिखें तो वे सोचते हैं कि आप उनके पैसों के लोभी हैं, और यदि आप उन्हें पत्र न लिखें तो वे सोचते हैं कि आप उनकी चिंता नहीं करते हैं। यदि आप उनसे भेंट करने उनके घर जाएं तो उनके विचार में आपने उनके काम में बाधा उत्पन्न की, और यदि आप उनके घर न जाएं तो वे सोचते हैं कि आप उनमें रुचि नहीं रखते। मेरे मित्रों, एक दिन मैं और मेरी पत्नी प्रातःकाल नाश्ता करने से पूर्व ही यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा लगभग 300 किलोमीटर लंबी थी, अतः हमें मार्ग में भूख लग आई तो हम एक रेस्तरां में अर्थात होटल में नाश्ते के लिए गए। जब मैं बिल भुगतान करने को गया तो काउंटर पर लिखा था, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते परंतु प्रयास अवश्य करते हैं। जी हाँ, आप शायद इससे परिचित होंगे, परंतु मेरे लिए यह एक नई बात थी और उससे मेरा दिल प्रभावित हुआ। ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। कहने का अर्थ यह है कि आपका जीवन ऐसा हो कि कोई यह न कहने पाए, उसके चाल चलन के कारण मुझे उद्धार की बातों पर विश्वास नहीं होता है। अब पौलुस सेवकाई के गुणों की सूची देता है जो अति रोचक है। आप निकालिए दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसका 4 पद, लिखा हुआ है, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। ध्यान दीजिए, बड़े धैर्य से, यह गुण सूची में सबसे ऊपर है। मेरा विश्वास करें, मैं इससे पहले ही गुण से मात खा गया। मैं आपके समक्ष स्वीकार करता हूं कि यही एक गुण मुझ में लगभग है ही नहीं। मेरी पत्नी तो क्या, मेरे मित्र भी कहते हैं, यदि आपने कभी धैर्य पर प्रचार किया तो मैं उठकर बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि आप धैर्य पर चर्चा करने वालों में से नहीं हो। अतः आप निश्चिंत रहें, मैं धैर्य पर कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि यह सद्गुणों की सूची में सबसे पहला है। दूसरा है क्लेशों से, अर्थात यह एक ऐसा दुख है जो अनेक महान सेवकों को अब भी उठाना है। आगे है दरिद्रता से, गरीब घरों में जन्मे विश्वासी इसे समझते हैं। अपने बाल्यकाल में मैंने देखा कि मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं होता था, हम बहुत गरीब थे। यदि हमारा दुकानदार हमें उधार सामान ना देता तो हम भूखे ही रह जाते थे, कभी कभी तो हम बिना खाए सो जाते थे। और आप जाना चाहते हैं, मैं आज तक यही सोचता हूँ कि वह अति स्वादिष्ट भोजन है जिसे हमने बचपन में खाया था। यहाँ पर फिर देखेंगे, डॉक्टर आयरनसाइट कहते हैं कि उनकी युवावस्था में उन्होंने 3 दिन किसी सभा में प्रचार किया और 3 दिन तक उन्हें खाना नहीं मिला। वे एक ऐसे समूह में प्रचार कर रहे थे जो सोचते थे कि वह विश्वास से जीवित रहते हैं, और उन्होंने निश्चय ही उन्हें विश्वास पर छोड़ दिया। 3 दिन तक उन्होंने उन्हें खाने का पैसा नहीं दिया। 4th दिन वह सोच ही रहे थे कि बिस्तर में लेटे रहें या उठकर अपना बेल्ट एक छेद और कसकर बांध लें, कि उन्होंने देखा द्वार के नीचे से एक पत्र भीतर डाला गया। उन्होंने उठकर वह पत्र लिया और खोला। उसमें लिखा था, यह मसीही सहभागिता की अभिव्यक्ति है। उसमें 500 रुपये का नोट था। उस सुबह उन्होंने सबसे अच्छा नाश्ता किया। मेरे मित्रों, लिखा है क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। आज अनेक विश्वासी इसके अनुभव से अनभिज्ञ हैं। युवा पीढ़ी तो इन अनुभवों को जानती भी नहीं है, और पीढ़ियों में भेद का कारण भी यही है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय के 5 पद में लिखा है, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। देखिए, कोड़े खाने से, आज हम नहीं समझते और नहीं जानते कि कोड़े खाना क्या है, जैसे पौलुस ने खाए थे। तथापि हमें पवित्र जनों द्वारा मानहानि की बातें सुनना पड़ती है, और वह भी धार्मिक शब्दों में। मेरी कलीसिया में एक महिला थी, उसकी बोली बड़ी कड़वी थी। वह संध्या सभा के बाद मुझसे कहती, भाई साहब, आपका आज सुबह का संदेश बहुत अच्छा था। उसके कहने का अर्थ था कि संध्याकालीन सभा में मेरा प्रचार अच्छा नहीं था। प्रचारक के मुंह पर जूता मारने की यह कुछ लोगों की रीति है, जैसा कि लोग कहते हैं। पौलुस अपनी सेवा में अन्य अनुभवों की सूची भी देता है। आज भी कुछ सेवकों का यह अनुभव है, जेल जाना, हुल्लड़ का सामना करना, परिश्रम करना, रातों को जागना, उपवास करना आदि सबका अनुभव पौलुस को था। अब वह सेवक की पहचान के अन्य लक्षण को हमें लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 6 और 7 पद में, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है। पवित्रता से, मेरा विश्वास करें, एक सेवक को अपने जीवन में पवित्र रहना आवश्यक है, न केवल सेवक को परंतु प्रत्येक विश्वासी को। पवित्रता की कमी सेवा की हानि एवं आघात है। सेवक का अनैतिक एवं अपवित्र पाया जाना एक त्रासदी है। पवित्रता महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के समक्ष भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसके सेवक हैं। आगे है ज्ञान से, मेरे विचार में यहाँ ज्ञान का अर्थ धर्म शास्त्र के ज्ञान मात्र से नहीं है, परमेश्वर के वचन के सेवक के पास बहुत सी जानकारियां भी होना आवश्यक है, उससे अपने समय का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। धीरज से, यहाँ फिर वही बात आती है, धीरज अर्थात सहन शक्ति। कृपालुता से, ओह आज विश्वासी कैसा तरसते हैं कि उनके पास्टर में उदारता और दयालुता हो जो उनमें गहरी रुचि रखता हो। आगे है पवित्र आत्मा से, परमेश्वर उस हर एक प्रचारक पर दया करे जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई और पथ प्रदर्शन के बिना प्रचार करता है। मैं अन्य किसी की बात की अपेक्षा इस विषय में सबसे अधिक चिंतित रहता हूँ। मैंने अपने सेवा के 17 वर्ष में अनेक विश्वासी महानुभावों का अनुकरण करने का प्रयास किया। जी हाँ, मैं एक निवर्तमान महान प्रचारक के बारे में सदैव सोचता हूँ। मैं जब भी प्रचार करने निकलता हूँ तब मैं एक अंतिम बात जो कहता हूँ, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रचार करने की क्षमता प्रदान कर, क्योंकि एक प्रभावी सेवा केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। आगे देखते हैं सच्चे प्रेम से, आज सच्चे प्रेम की कैसी गहन आवश्यकता है। हमें धर्मी पाखंडियों की आवश्यकता नहीं है, धार्मिक शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। हमें आडंबर करने वाले विश्वासियों की आवश्यकता नहीं जो मुंह पर आपको प्रेम दिखाते तो हैं परंतु पीठ में छुरी घोंप देते हैं। हमें सच्चे अगाध प्रेम की आवश्यकता है, ईमानदारी के प्रेम की आवश्यकता है। हमें उस प्रेम की आवश्यकता है जो परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में उत्पन्न करता है। आगे है सत्य के वचन से, अर्थात बाइबल के ज्ञान में प्रचारक को परमेश्वर के सामर्थ्य में प्रचार करना है, और यह तब ही संभव है जब वह मंच पर आने से पूर्व परमेश्वर के साथ एकांत में समय व्यतीत करता है, मनन चिंतन करता है। धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, अर्थात जीवन के हर एक परिक्षेत्र में उचित आचरण से। अब पौलुस हमें 9 ऐसे गुण को बताता है जो वास्तव में असंगत हैं, परंतु युक्ति युक्त ये परमेश्वर के जन के गुण हैं। आइए देखें 2 कुरिन्थियों की पत्री 6:8-10 पद में लिखा हुआ है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। मित्रों, आदर और निरादर से, कुछ लोग आपको स्वीकार करेंगे और कुछ अस्वीकार करेंगे, यह वास्तव में संतुलित सेवा है। तब है दुर्नाम और सुनाम से, कोई चाहे हमें बुरा कहे हम प्रभु की सेवा करते जाएंगे। शेक्सपियर के नाटक में एक नायक कहता है, वे मुझे सराह कर गधा बनाते हैं जबकि मेरी बैरी मुझे मुंह पर गधा कहते हैं। इस प्रकार श्रीमान जी, मैं अपने बैरियों की सहायता से अपने बारे में ज्ञानोपार्जन करता हूँ और मित्रों द्वारा दुर्व्यवहार सहन करता हूँ। चाहुकारी हमें आलोचना से अधिक हानि पहुँचाती है। जी हाँ, भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी अच्छे हैं। मनुष्य हम पर विश्वास नहीं करते परंतु हम परमेश्वर का सुनाते हैं। अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं। परमेश्वर के सेवक संसार के लिए जनमान्य नहीं परंतु परमेश्वर के लिए मान्य हैं। मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं। पौलुस मृतक सा था परंतु मसीह में उसे नया जीवन प्राप्त था। मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। पौलुस ने हर स्थान पर सताव, मार, कोड़े, पथराव आदि सहन किया परंतु वह फिर भी जीवित रहा। शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। मनुष्य के पाप के कारण वह शोकित था और सुसमाचार का त्याग उसका दुख था परंतु वह मसीह में आनंदित था। कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। यदि आपका सामना किसी धनवान प्रचारक से हो तो सावधान रहें। सिवा में धनवान होना संभव नहीं। हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे प्रथम पत्र में व्यक्त किया था कि सब वस्तुएं हमारी हैं, सांसारिक वस्तुएं, जीवन, मृत्यु, वर्तमान, भविष्य आदि सब। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 22 और 23 पद में, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। ओह, हम कैसे धनवान हैं फिर भी कंगाल हैं। मित्रों, पौलुस ने हमें सेवा से आवश्यक गुणों की 3 मालाएं दी हैं और आप देखेंगे कि पहली है भौतिक वस्तुएं, दूसरी मानसिक बातें, तीसरी है आत्मिक बातें। सब अत्यधिक महत्वपूर्ण है प्रत्येक के जीवन के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे यही कहता है कि हम इन 3 बातों को ध्यान में रखें और उसके वचन का प्रचार करें। जिस प्रकार से कहा गया है कि भेड़ भेड़ को ही जन्म देता है, हम जो विश्वासी कलीसियाओं में हैं, आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं ताकि अन्य जो परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं, उसके प्रेम से अनभिज्ञ हैं, वे भी आपके वचन के सेवकाई के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को जान पाएं। आज मैं यह विश्वास करता हूं कि आप इसे सुनकर अवश्य अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक बातों को सीखा है और आप अपने जीवन में उन उत्तम बातों को लागू करेंगे जो आज आपने सीखा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो, शुद्ध तू प्रभु, तेरी शुद्धता मुझ में हो। पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो, शुद्ध तू प्रभु, तेरी शुद्धता मुझ में हो। तेरा ही रूप सदा हो मुझ में प्रभु, प्रभु।